लगी तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि
शांति। आप सभी पिछले कुछ दिन से बाबा के मधुबन घर में बहुत ही सुंदर तपस्या कर रहे हैं, योग भट्टी कर रहे हैं। तो मुझे आज विषय मिला कि राजयोग से हम कैसे विक्रम विनाश करें, क्योंकि अभी वापस घर जाने का समय है और पिछले 63 जन्मों में हमने बहुत सारे विक्रम किए हुए, पाप कर्म किए हुए किए हैं हम सबने। उनको विनाश करना है, उनको भस्म करना है। कैसे भस्म करें, इसी बात पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि विक्रम क्या चीज है। पहले तो हमको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि विक्रम किसे कहते हैं। विक्रम खाली कर्म कर्म को नहीं कहेंगे। अगर हम विकारों के वश होकर कोई भी कर्म करते हैं, देखना भी कर्म है, किसी भी विकार के वश होकर किसी चीज को हम देखते हैं या पढ़ते हैं, पढ़ना भी कर्म है। अगर विकार के वश कोई चीज पढ़ते हैं तो भी विकर्म है, वो भी पाप कर्म है। विकारों के वश सुनते हैं कोई बात, ऐसी भावना रख करके सुनते हैं तो वो भी पाप कर्म है। विकार कोई चीज हम खाते हैं, विकार के वश खाते हैं, स्वाद के वश होकर खा रहे हैं, या कोई भी विकार के वश होकर खाते हैं तो वो भी पाप है। अगर हम कोई बोलते हैं ऐसा शब्द जिससे दूसरों को दुख होता है, ये किसी विकार के वश, काम के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, मोह के वश, अहंकार के वश होकर बोलते हैं, चिंता भय के वश बोलते हैं, या ईर्ष्या द्वेष के वश होकर के बोलते हैं, वो भी पाप कर्म है। और हाथ पैर से जो कर्म करते हैं वो तो है ही ऐसा विकर्म। और एक नियम है हमारा, संसार का नियम कहें या भगवान का नियम कहें, कि जो भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं या हाथों से कर्म करते हैं, वो सब अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। और सब रिकॉर्डिंग जो होती है, वो व्यक्ति जब हमारे सामने आता है वो रिकॉर्डिंग खुल जाती है, वो फाइल खुल जाती है, और फिर वही पाप वही कर्म वापस हो जाता है। ये जो कर्म बार बार हमसे गलत कर्म होते हैं वो रिकॉर्ड होते रहते हैं और फिर पक्के हो जाते हैं और फिर नेचुरल आदत बन जाती है, इसी को संस्कार कहते हैं। और कुछ समय हो जाने के बाद फिर बुद्धि और मन काम नहीं करते हैं, ये संस्कार काम करते हैं ऑटोमेटिक। जैसे कि हमें कोई व्यक्ति हमें क्रोध कर रहा है या हमसे गलत बोलता है तो हम उसको चाह करके तो हमें गुस्सा ऑटोमेटिक आ जाता है, उसमें बुद्धि काम नहीं करती है, मन काम नहीं करता है और हमसे वो पाप कर्म दोबारा हो जाता है। इसलिए इनको पाप कर्म कहा जाता है कि हमसे बार बार ये कर्म होते हैं और हर बार पाप कर्म करने से आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती है। जब हम कहते हैं आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, इसका मतलब क्या है, जो आत्मा के पास 7 गुण है, 7 एनर्जी है या 7 तरह की करंट है अंदर आत्मा में, ज्ञान की करंट है, पवित्रता की करंट है, शांति की करंट है, प्रेम की करंट है, खुशी की करंट है, आनंद की करंट है और शक्तियों की करंट है, वो करंट उतनी कम हो जाती है। अर्थात ज्ञान की बजाय अज्ञान आ जाएगा, पवित्रता की बजाय अपवित्रता अंदर आने लगती है, शांति की बजाय हमारा मन शांत हो जाता है, रूहानी प्यार की बजाय हमारे अंदर वो प्यार कम होके फिजिकल प्यार की तरफ जाने लगता है, दुनियावी प्यार की तरफ जाने लगता है, अतिंद्रिय खुश अतिंद्रिय सुख खत्म होकर के इंद्रियों का सुख ढूंढने लगते हैं, खाने का सुख, देखने का सुख, पढ़ने का सुख, सुनने का सुख, बोलने का सुख, ये इन सुखों में हम फंसने लगते हैं। आनंद जो अंदर का जो आनंद है, आत्मिक आनंद है, वो खत्म हो जाता है और शक्तियां खत्म होकर के जो हमारे अंदर सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति कम होती जाती है। इससे इस तरह से आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होते 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 एकदम कमजोर हो जाती है। ये तो एक तरफ की बात है। दूसरी तरफ जब हम बाबा के बच्चे बन गए, जब हमने ज्ञान सुन लिया, ज्ञान समझ लिया, जब से हम बाबा के बच्चे बने, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, आप सभी 5 साल से ऊपर वाले हैं ना, 5 साल से ऊपर वाले हैं ना, माताएं सभी भट्टी जो भट्टी में है, जो 5 साल से हम ऊपर हैं और पिछले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20, 25, 30 साल में, जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं और जब से हमने पाप कर्म करने शुरू, बाबा का बनने के बाद भी अगर हम पाप कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म हमसे तब हो रहे नहीं हो रहे, आप बताइए, अभी पाप कर्म होने बंद हो गए या होते हैं? अभी भी होते हैं ना रोज। अब उसकी सजा 100 गुना हो जाती है, उसका पाप 100 गुना लगता है। जब हम बाबा के बच्चे नहीं थे तो एक पाप करते थे, एक ही गुना पाप लगता था, किंतु जब से बाबा के बने 100 गुना पाप हो गया। तो बाबा का बनने के बाद तो पाप कितने हमसे पाप हो रहे हैं। सबसे बड़ा पाप कौन सा है बाबा का बनने के बाद? बाबा ने एक बार मुरली में बताया था, बाप को भूलना ही सबसे बड़ा पाप कर्म है। बाबा का बनने के बाद बाप को भूलना या बाप की श्रीमत को छोड़कर के किसी और की मत पे चलना, मनमत पे चलना या परमत पे चलना, यही सबसे बड़ा पाप कर्म। तो बाबा का बनने के बाद तो हमको बहुत बहुत अटेंशन से हमारा हर कदम बाप की श्रीमत पे होना चाहिए। चलिए अब हम राजयोग मेडिटेशन की थोड़ी गहराई में चलते हैं कि कैसे हमसे ये विकर्म विनाश हो, कैसे हम अपने इस तरह से जीवन जिए, ये ब्राह्मण जीवन ऐसा जिए जिससे कि हमारे हमसे विकर्म ना हो और हमसे श्रेष्ठ कर्म बाबा की श्रीमत पे करें, और जो अभी जो हमसे पाप कर्म हो चुके हैं अभी तक और विकर्म ना हो और हमसे पाप कर्म ना हो, और पुराने जो हमने पाप कर्म जो रिकॉर्ड है हमारे यहाँ पर हमारे मस्तिष्क में, आत्मा में उसकी सॉफ्ट कॉपी है, ब्रेन में उसकी हार्ड कॉपी है, विनाश हो जाए। और इसके फिर 5 स्टेप हैं विक्रम विनाश होने के बाद, उसमें 5 स्टेप हैं फरिश्ता बनने तक। हमारा लक्ष्य क्या है? अभी हम मनुष्य से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से हमें फरिश्ता बनना है, किंतु फरिश्ता तक पहुंचने में हमारे 5 कदम हैं। पहला कदम है विक्रमाजीत, पहले हम विक्रमाजीत बनेंगे, विक्रम हम पूरे भस्म करने के बाद विक्रमाजीत बनेंगे, विक्रमाजीत के बाद हम कर्मातीत बनेंगे। जब हम कर्मातीत बनना शुरू करेंगे, जब हम कर्मातीत बनने के नजदीक पहुंचेंगे तो आत्मा रूपी बैटरी बड़ी तेजी से चार्ज होगी, एकदम हम लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएंगे, हमारी स्थिति सदा स्मृति स्वरूप की हो जाएगी। ये हमारा तीसरी स्टेज होगी, पहला है विक्रमाजीत, दूसरा है कर्मातीत, तीसरी है संपूर्ण स्थिति, लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति कहें या सदा स्मृति स्वरूप की स्थिति कहें, तीसरी ये स्टेज। चौथी स्टेज फिर होगी एवेक, फिर हमें बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, हमारी वृत्ति के द्वारा, हमारी भावनाओं के द्वारा, हमारे संकल्पों के द्वारा सेवा होगी, वो हमारी अवैध स्थिति होगी। और जब हमारी ऐसी स्थिति बन जाएगी तब हम फरिश्ता बन जाएंगे, तो फरिश्ता बनकर के विश्व के सभी मनुष्य आत्माओं की उसी समय विनाश शुरू होगा। ये निशानी है विनाश की, जब हम फरिश्ता बन जाएंगे उस समय विनाश शुरू होगा और उस समय हम आत्माएं बाबा के बच्चे फरिश्ता बनकर के इस विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं जो उसमें भूकंप के द्वारा, साइक्लोन के द्वारा, सुनामी के द्वारा या एटम बॉम्ब्स के द्वारा दुखों को प्राप्त हो रहे होंगे, उन आत्माओं को मुक्ति प्रदान करेंगे, हमारे चारों तरफ साक्षात्कार होते रहेंगे, दुनिया में हाहाकार होगी और बाबा के बच्चों की जय जयकार होगी, उस समय बाप की प्रत्यक्षता का समय होगा। तो ये 5 स्टेज में हम, ये हमारी स्थिति होगी। और विक्रमाजीत बनने के लिए उसमें भी 4 स्टेज हैं, पहली पहली स्टेज उसमें है कर्मेंद्रिय जीत। विकर्माजीत बनने के लिए पहली स्टेज हमारी आएगी कर्मातीत, कर्मेंद्रिय जीत। ये पांचों कर्मेंद्रियां हमारे वश में हो जाएंगी, जो हम देखना चाहेंगे वही हम देखेंगे। पहली हमको ये स्थिति बनानी है, हमारी सारी कर्मेंद्रियां हमारे वश में हो जाएं, जो बाबा की श्रीमत पर ही हम देखें, बाबा की श्रीमत पर ही हम सुने, बाबा की श्रीमत पर ही हम पढ़ें जो पढ़ना है, मनमत पे या परमत पे ना पढ़ें, बाबा की श्रीमत पर ही बोलें, बाबा की श्रीमत अनुसार ही खाना खाएं, अपनी मनमत पे या परमत में या स्वाद के वश होके ना खाएं, अपने हाथ पर से कर्म भी हम बाबा की श्रीमत पर ही करें। पहली स्थिति होगी हमारी कर्मेंद्रिय जीत, दूसरी स्थिति होगी माया जीत। माया जीत अर्थात ये पांचों विकार, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, इन पर हमारी संपूर्ण विजय हो जाएगी। अर्थात ये पांचों विकार हमारे अधीन हो जाएंगे, पांचों विकारों का रूप परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी स्थिति हमारी माया जीत की। और फिर होगी प्रकृति जीत। प्रकृति जीत माना प्रकृति के पांचों तत्व, आकाश अग्नि वायु जल और पृथ्वी, ये पांचों के पांचों तत्व हमारे वश में होंगे। इसका अर्थ है कि ये जो हमारा पूरा शरीर है ये पांचों तत्वों का बना हुआ है, और जो हमारा भोजन है, जो भी हमारी उपभोग की वस्तुएं हैं, वो भी पांचों तत्वों की बनी हुई है। उनमें हमारी आसक्ति नहीं जाएगी, कपड़ा पहनने में, खाने की चीजों में, देखने की चीजों में, डेली उपयोग करने की चीजों में, पैसे में, प्रॉपर्टी में, है ना, अपने मकान में, जायदाद में, इनमें लगाव ना लगाव रहेगा, ना झुकाव रहेगा, ना किसी का प्रभाव रहेगा, ना किसी से टकराव रहेगा। तो ये हमारी तीसरी स्थिति होगी जब हम विकर्माजीत बनने जा रहे हैं। और फिर लास्ट इसमें स्थिति होगी मन जीत। मन पर हमारी संपूर्ण विजय हो जाएगी, अर्थात कोई भी संकल्प, कोई भी हमारे भावनाएं, हमारा कोई भी वृत्ति या स्मृति, वो हमारे हमें श्रीमत पर ही आएगी और उसी अनुसार हम कर्म करेंगे। जब ये मन जीत हो जाएंगे, अर्थात मन जीते, तब हम जगत जीत बन जाएंगे, अर्थात तभी हम विकर्माजीत बनेंगे। तो ये मुख्य स्थितियां जिनके द्वारा हमें गुजरना है। विकर्माजीत बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कर्मेंद्र जीत बनना पड़ेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, माया जीत, फिर प्रकृति जीत, और फिर मन जीते जगत जीत, तब हमारी स्थिति विकर्माजीत की आएगी। उसके बाद कर्मातीत आएगा, उसके बाद हमारी बैटरी फुल चार्ज होगी, फिर हम अवैध फरिश्ता बनेंगे। तो अभी हम इसमें चलते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, किस तरह से हम कार्य करेंगे। अगर आप इस बात को इस तरह से ले लें कि अभी हम, बाबा ने आपने समय 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 पर मुरली में कहा हुआ है कि अभी हम रिटर्न जर्नी पर हैं, रिटर्न जर्नी समझते हैं ना, अभी हमारा 84वां जन्म है। जब इस पिछले जन्म में जब हम बाबा के बच्चे बने, उससे पहले हमारा 83वां जन्म था, अभी हमारा 84वां जन्म है। मान लीजिए हम 5 साल से ज्ञान में हैं, तो 84वें जन्म को हमारे 5 साल हुए हैं। 10 साल के हैं, 15 साल से हैं, तो हमारे 84वें जन्म को 15 साल हुए हैं। तो ये जो 84 जन्म, हम लोग 84 जन्म में हैं, और जैसे ही हम अब शुरू होते हैं, तो अभी सबसे पहले हमें इस जन्म के विकर्म विनाश करने पड़ेंगे। बाबा के जब से बने हम, तब से हमारे अंदर क्या क्या विकर्म हमने किए, वो विनाश हमें करने होंगे। जब 84वें जन्म के विकर्म विनाश हो जाएंगे, तो 83वें जन्म के शुरू हो जाएंगे। जब 83वें जन्म के विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर 82वें जन्म के शुरू हो जाएंगे। वही व्यक्ति हमारे सामने आएंगे, और वो हमारे सामने आकर के वो हमने अपनी क्रियाएं करेंगे, अपने हिसाब से हमसे बिहेव करेंगे, और उनको ना देखते हुए हमें बाबा की याद में रहते हुए आगे बढ़ना है। अगर हमने उनको देख लिया, उनके क्रियाकलापों पर हमारी बुद्धि चली गई, बाबा की याद भूल गई उनके कर्मों को देख करके, तो हम वहीं फंस जाएंगे। 83 जन्म के बाद 82वें जन्म में जाएंगे, फिर 81वें जन्म में जाएंगे, फिर 80वें में जाएंगे। ऐसे हमें 63 जन्म निकाल करके हमें 20वें जन्म तक पहुंचना है। ये जो पिछले 63 जन्मों की जर्नी, 63 जन्म द्वापर और कलयुग के कलयुग के 42 जन्म और सत्युग और द्वापर के 21 जन्म, इनमें हमने विक्रम किए। जब से देवभान आया, हम द्वापर में आए, तब से हमने देवभान के वश होकर के, फिर और पांच विकारों के वश होकर के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होकर, और इनके जो बाल बच्चे हैं उनके वश होकर के जो कर्म किए, वो ही पाप कर्म बने। और वही पाप कर्म, एक ये बहुत राज की बात है, कर्मों की गुह्य गति है, कि ये पाप कर्म हमने किनके साथ किए हैं? जो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं, हमारे संबंध संपर्क में हैं, हमारे ही रिश्तेदार हैं, हमारे ही पड़ोसी हैं, हमारे ही घर या ऑफिस में दुकान पे कार्य करने वाले लोग हैं, उनके साथ ही ज्यादातर हमारे कर्म हुए हैं, और वो हमसे समय समय पर आके टेस्ट लेंगे उन्हीं चीजों का, जो हमने दुख दिया हुआ है उनको, जो हमने सुख दिया हुआ है उनको, कुछ उनसे लिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, वो इस जन्म में आकर के हमारे सामने प्रैक्टिकल रूप में आकर के हमारे सामने परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे, उन बातों को जागृत करेंगे। अगर हम बाबा के श्रीमत रूपी रेखा के अंदर हैं, श्रीमत की लाइन के मर्यादा की लकीर के अंदर रहेंगे, और बाप के याद रूपी कवच, याद रूपी माया प्रूफ ड्रेस पहन करके रखेंगे, तो हमसे नया विकर्म नहीं होगा, और हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हमने जरा भी श्रीमत रूपी मर्यादा की लकीर से बाहर पैर निकाला, या याद रूपी माया प्रूफ ड्रेस से हम जरा भी बाहर निकले, तो क्या होगा? माया क्या करेगी? हमसे विकर्म करा लेगी, और हमें वापस, जैसे सांप काट लेता है, हम 93 पे पहुंच जाते हैं, और सांप काट लेता है, हम 6 पे आ जाते हैं। आपने सांप सीढ़ी देखी है ना? हम मान लीजिए हम विक्रम विनाश करते करते 35वें जन्म में पहुंच गए, विक्रम विनाश करते करते, और 35वें जन्म में फिर हमसे विक्रम हो गया, तो क्या होगा? हम कहां पहुंच जाएंगे वापस? 84वें जन्म में वापस आ जाएंगे, फिर शुरू करना पड़ेगा 84 से 83, 83 से 82, 82 से 81, 81 से फिर 80, फिर वापस हमें 35 पे जाएंगे, फिर 34 पे जाएंगे, 33 पे जाएंगे, और मान लीजिए 28 पे पहुंच गए, फिर हम अगर वहां जाके फिर हमने विक्रम कर लिया, तो क्या होगा? फिर वापस 84 पे आ जाएंगे। इसलिए ये यात्रा बहुत ही कितनी ऊंची चढ़ाई है ना? चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। इसलिए एक भी क्षण की हमारी असावधानी, हम ऊपर चढ़ रहे हैं, इसमें एक क्षण की भी असावधानी, सावधानी हटी तो क्या होगा? दुर्घटना हुई। इसलिए सुबह से लेकर शाम तक, जब से हम सोते हैं, जब से हम उठते हैं सुबह अमृत वेले, और तब से लेकर रात तक, ये श्रीमत रूपी पटरी पर चलना बहुत बहुत आवश्यक, हर संकल्प में, देखने में, पढ़ने में, सुनने में, बोलने में, खाने में, हाथ या पैर से को कर्म करने में, श्रीमत का हर कदम पे बहुत बहुत आवश्यक। नहीं तो क्या होता है, आपने देखा भी होगा, अपने भाई अपने अंदर भी देखा होगा, और भाई बहनों के अंदर भी देखा होगा, ज्ञान में 20 साल से चल रहे हैं, 30 साल से चल रहे हैं, किंतु आज भी स्थिति उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है वहीं खड़े हुए हैं। आज भी उनको वैसा ही गुस्सा आता है, वैसी चिंता रहती है, वैसे उदास हो जाते हैं, है ना? ऐसा होता नहीं होता है? बताओ, ऐसा होता है? माताएं बताएं, होता है? क्यों होता है? क्योंकि हम सावधान नहीं रहते हैं। बाबा ने बताया था, अगर हमें वारिस क्वालिटी की आत्मा, वारिस क्वालिटी की आत्मा निशानी क्या है? जिसका हर सेकंड, हर संकल्प और हर श्वास बाबा की याद, बाबा की सेवा और यज्ञ में लगे, वो आत्मा वारिस क्वालिटी की आत्मा बनती है। अर्थात वारिस माना 108 की माला का दाना बनती है। ये नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार 16108 की माला का दाना बनती है। वो राजा रानी बनते हैं, वो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, बाकी सब प्रजा में चले जाते। तो हमें क्या बनना है बताओ? जो राजा रानी बनना चाहते हैं वहां उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, ऊंचा। तो सभी राजा रानी बनना चाहते हैं। तो राजा रानी बनने का पुरुषार्थ यही है, हम इस पे गहराई से समझेंगे अभी। अगर हमें राजा रानी बनना है, खाली राजा रानी बनने के लिए फिर क्या कंडीशन है? सपोज आप सेकंड एसी की टिकट लेना चाहते हैं, आप बॉम्बे जाना है आपको अरावली एक्सप्रेस से। अगर आपको थ्री टायर स्लीपर में जाना है तो 300 रुपए की टिकट आती है। सेकंड एसी में जाना है, थ्री टायर एसी में जाना है, तो उसकी टिकट कितने की आती है? 1100-1200 रुपए की आती है ना। और सेकंड एसी में जाना है तो कौन सी कितने की टिकट आएगी? 1600-1700 की टिकट आएगी, है ना। और फिर फर्स्ट क्लास में जाना हो तो 3000 रुपए की टिकट आएगी। तो 3000 रुपए अगर फर्स्ट एसी में जाना है, 3000 रुपए चाहिए ना? नहीं चाहिए। 3000 खर्च करेंगे करने पड़ेंगे ना, या 300 रुपए खर्च करके हम फर्स्ट एसी में जा सकते हैं? 3000 10 गुना पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना, अर्थात हमको 10 गुना ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। अगर हमें सेकंड एसी में भी जाना तो 5 गुना ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना, 5 गुना ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा तब हम सेकंड एसी में जा सकते हैं, सो के ठंडी ठंडी हवा खाते हुए जा सकते हैं। अदरवाइज हमको गर्मी में गर्म हवा, लोग बीड़ी पी रहे हैं, लोग सिगरेट पी रहे हैं, उसका धुआं सहते हुए जाना पड़ेगा, राइट। और वहां जाके भी ऐसा करना होगा, हमारे साथ ऊपर नीचे होता रहेगा। तो इसके लिए अभी हमको तैयारी करनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हम कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब थोड़ा सा हम गहराई में चलें, बाबा ने क्या कहा हुआ है, विकर्म विनाश कैसे होते हैं। कई बार हम सुनते हैं, जैसे अभी संडे की मुरली थी, है ना, जहान को जहान के नूर हैं, तुम बच्चे जहान के नूर हो, है ना। आप सबने सुनी ना मुरली, वो हम जहान को रोशन करने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा, शांति की बाबा ने बात की कि तुम बच्चे अशांति और शांति को तुम जानते हो, है ना, तुम शांत हो, दुनिया अशांत है, तुम अच्छे में शांति प्राप्त होती है, बाप को याद करने से तुम्हें शांति मिलती है। आप क्या समझते हैं शांति किसे कहते हैं? हम ओम शांति कहते हैं ना, शांति किसे कहते हैं? हम बाप को याद करते तो शांति क्यों प्राप्त होती है? देखो, बाबा जो शिव बाबा है, शिव बाबा को संकल्प चलते हैं क्या? शिव बाबा ऊपर बैठा है, दुनिया में 700 करोड़ आत्माएं हैं और हर तरह की आत्मा इसमें है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई हेराफेरी कर रहा है, कोई किसी को गलत दृष्टि से देख रहा है, कोई बहुत लालच कर रहा है ना, कोई बहुत अहंकारी है, कोई चिंता में, कोई बीमार है, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहाँ भूकंप आ रहे हैं, कहाँ लड़ाइयां हो रही हैं। तो बाबा को चिंता होती है क्या? ऊपर चिंता होती है बाबा को? विचार चलते हैं ऊपर? तो बाबा सब कुछ देखते हुए भी साक्षी दृष्टा है, बाबा को एक भी विचार नहीं चलता है। बाबा जानता है ये ड्रामा बना हुआ है, इसमें हर आत्मा अपना कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रही है और जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, उसमें कोई माफी नहीं है, कोई कृपा या आशीर्वाद की बात नहीं है। जो श्रीमत पे कर्म करा अच्छे फल पाएगा, जो मनमत या परमत पे कर्म करा उसको उसके अनुसार उसका फल मिलेगा। बाबा इसमें जरा भी इंटरफेयर नहीं करता। ऐसे ही जब हम ऐसे परमात्मा शिव को याद करते हैं तब उसका कोई संकल्प नहीं चलता, हमारे बहुत संकल्प चलते हैं। क्या हमारे क्या संकल्प चलते हैं? ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करती है, इसने ऐसा क्यों किया, इसने मेरे को बहुत दुख दिया है, मैं तो बचपन से दुखी सहता आया हूं या दुखी सहती आई हूं, है ना। बचपन में थी छोटी तो वैसे दुख सहती थी, शादी हुई तो ये दुख आया, फिर इसने दुख दिया, फिर इसने दुख दिया, फिर इसने दुख दिया, नहीं। हमारे मन में यही चलता रहता है सारा दिन, हमें तरह तरह के विचार आते रहते हैं। ब्राह्मणों को एक मिनट में 15 विचार आते हैं और दुनिया वालों को एक मिनट 30 विचार आते हैं। ये फर्क है दुनिया में ब्राह्मणों में और दुनिया वालों को। दुनिया में एक मिनट में 30 विचार आते हैं और ब्राह्मणों को एक मिनट में 15 विचार आते हैं, और शिव बाबा को कोई विचार आता ही नहीं। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता क्यों बना? क्योंकि ब्रह्मा बाबा को सिर्फ एक ही विचार आता है। कौन सा विचार? मेरे बच्चे बाप समान बने तो वापस घर चलें, बस इतना ही उनका एक ही विचार है, दूसरा विचार उनको नहीं आता है। तो शिव बाबा को 0 विचार और ब्रह्मा बाबा को 1 विचार, और हमारे कितने विचार? कितने विचार? 15 विचार, और चिंता की तो 20 विचार, डरते हैं तो 25 विचार, चिड़चिड़ापन आया कोई बात में तो 30 विचार, गुस्सा आया तो 35 विचार। दुनिया में सभी को चिंता रहती है, सभी को डर लगता है और सभी चिड़चिड़े हैं। चिड़चिड़ा समझते इरिटेट रहते हैं अपने आप से दूसरों से, इसलिए एवरेज विचार दुनिया में 35 विचार चलते हैं, और गुस्सा भी सभी करते हैं, 30 से किसको 35 भी हो जाते हैं, गुस्सा करते 35 हो जाते हैं, और बहुत जोर से गुस्सा करते 40 विचार। ठीक है, ये दुनिया वालों की हालत है, हमारी ये हालत है, हम भी कभी कभी उसमें निकल जाते हैं, दुनिया जैसे हो जाते हैं। होते नहीं होते? जिनको कभी गुस्सा नहीं आता वो हाथ उठाओ, कभी नहीं आता। 1, 2, 3, 4, 5 थोड़े 10-15 लोगों ने हाथ उठाया, सिर्फ 10-10 लोगों ने हाथ उठाया, 10 बहनों माताओं ने, तो आप में से सिर्फ 10 माताएं जिनको कभी गुस्सा नहीं आता है, बाकी को इसका मतलब आता रहता है ना। तो हम भी 35 तक पहुंचते रहते हैं ना, बीच बीच में 35 पे पहुंच जाते हैं, नहीं? तो ये जो है हमारे, अब हम कैसे, हमें पहुंचना है। फरिश्ता माना क्या? फरिश्ता माना जिसको सिर्फ 1 या 2 विचार आते, 2 विचार आते। पहला विचार मैं आत्मा, दूसरा विचार मैं शिव बाबा का हूं, मैं बाबा का, बाबा मेरा, जिसका सिर्फ 2 ही विचार आते हैं वह फरिश्ता है। तीसरा कोई विचार ही ना आए ये फरिश्ता है। इस दुनिया का, इस दुनिया के संबंधों का, इन दुनिया पदार्थों का कोई विचार ना आए, दुनिया में जो मर्जी होता रहे कोई विचार ना हो, बाप मेरा साथी है और बाकी को साक्षी होकर देखते रहे, साथी और साक्षी, वो है फरिश्ता। अभी मंजिल समझ में आ रही? कहां, कौन सी मंजिल है हमारी, हमें कहां पहुंचना है, कहां पहुंचना है हमें बताओ। 30 से कहां पहुंचना है? 2 पे पहुंचना है, ठीक है, और 2 में भी कौन सा, मैं बाबा का या मैं बाबा की, बाबा मेरा, मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरों ना कोई। ये स्थिति हमारी जब पहुंचेगी तो हम फरिश्ता है। बीच में 63 जन्म है, जब वो तब हम बनेंगे जब 63 जन्म के विक्रम विनाश हो जाएंगे, क्योंकि विक्रम हमसे, पापकर्म हमसे, एक भजन बचपन में हमारी माताजी गाया करती थी, आप भी माताएं कभी कभी गाती होंगी, पुरानी माताएं तो गाती होंगी, वो भजन के लाइन थी कि मेरे पाप कर्म ये तुझसे प्रीत ना करने देते हैं, कभी जचाऊं मिलूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं, कैसे प्रभु जी आपके दर्शन पाऊं मैं। ये जो पापकर्म हमने रिकॉर्ड किए ना, हमारे मन में रिकॉर्ड हुए हैं, हमारी स्मृतियों में रिकॉर्ड हुए हैं, ये पापकर्म हमें बार बार हमें उस तरफ ले जाते हैं, और वो विक्रम बार बार करते रहते हैं। उस कारण से हम बाबा से वो जो मिलन बनाना चाहते हैं, जो अतिंद्रिय सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, आनंद के झूले में झूलना चाहते हैं, वो झूल नहीं पाते। एक सेकंड के लिए झूलते हैं, एक मिनट के ऐसा ऐसा करते हैं, तुरंत उतर जाते हैं, तुरंत घर का काम याद आ जाएगा, तुरंत दूसरी बात में बुद्धि चली जाएगी। लगातार हम आनंद के सुख झूले में झूलते रहें, अतिंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहें, वो स्थिति है, जब फरिश्ता बन जाएंगे तो वो स्थिति हमारी होगी। जब हमारे अंदर ये स्थिति आ जाएगी, जैसे आप देखें हंस होता है ना, एक हंस होता है एक बगला होता है, हंस को, हंस भी सफेद है बगला भी सफेद है, हंस को, हंस के सामने अगर 10 मोती पड़े हों, 90 कंकर पड़े हों या 90 कीड़े पड़े हों और उसमें बीच में 10 मोती पड़े हों, तो हंस को कीड़े नजर नहीं आते हैं, 90 कीड़े नजर नहीं आते, 10 मोती नजर आते हैं। वो उसको 10 मोती चुग लेता है, कीड़े उसको नजर ही नहीं आते। और बगले को, बगले के सामने 90 मोती पड़े हों, उसमें 10 कीड़े पड़े हों, तो बगले को क्या नजर आता है? 10 कीड़े दिखाई देते हैं, उसको मोती नजर नहीं आते। तो हमें योग के द्वारा वो स्थिति बनानी है, दुनिया में किसी व्यक्ति के अंदर 99 अवगुण हो, एक गुण हो सिर्फ, तो हमको 99 अवगुण नजर ना आए, सिर्फ एक गुण नजर आए। उसके अंदर 2 गुण है हमको वो ये ऑटोमेटिक हमारी स्थिति बन जाएगी। योग के द्वारा हमको उस स्थिति तक पहुंचना है कि कोई व्यक्ति हमारे घर में, पड़ोस में, हमारे संबंधों में कितना भी खराब से खराब हो, कितना भी अवगुणी आत्मा हो, कितना भी उसने हमारे साथ गलत काम किया हो, हमने कितना हमेशा उसके साथ अच्छा करते हैं किंतु वो हमेशा हमारे साथ गलत करते हैं, हमें दुख देते हैं, हमें बार बार टॉर्चर करते हैं, तरह तरह से उनके गलत शब्द, गलत इल्जाम लगाएंगे, आपको निंदा करेंगे आपकी जगह जगह, है ना, तो भी आपको उनका वो अवगुण ना दिखाई दे, उनके सिर्फ गुण दिखाई दे, गुण दिखाई देंगे, तब ऐसी स्थिति में आप आगे बढ़ सकेंगे। अगर अवगुण दिखाई देंगे तो आप, हम उन अवगुणों के जाल में फंस जाएंगे और आगे नहीं चढ़ पाएंगे। इसके लिए हमको इस बात को थोड़ा गहराई समझने की आवश्यकता है। तो जब हम शिव बाबा को जितना याद करते जाते हैं तो हमारे संकल्प कम होते जाते हैं। जब तो शिव बाबा का 0 संकल्प और मेरा 15 संकल्प, तो उसको जितना मैं उसकी याद में रहूंगा तो मेरे संकल्प कम होते जाएंगे। जब मेरे संकल्प कम होते जाएंगे तो मेरे को ऑटोमेटिक शांति, शांति माना कम विचार, सिर्फ पॉजिटिव विचार जब आते हैं, सिर्फ 100% पॉजिटिव विचार, और पॉजिटिव विचार सत्य पर आधारित होते हैं, ट्रुथ से ही पॉजिटिव विचार पैदा होते हैं, जो रियल है उससे पॉजिटिव विचार पैदा होते हैं, जो अनरियल है, जो झूठ है, उससे नेगेटिव विचार पैदा होते हैं या वेस्ट विचार, वेस्ट संकल्प पैदा होते हैं। तो जब मैं सत्य में टिक जाता हूं, मैं आत्मा हूं, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, परमधाम निवासी, अति सूक्ष्म परम ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूं, और मेरे सरल संबंध उनके साथ हैं। ये सृष्टि रूपी ड्रामा एक नाटक है। इस नाटक में हर आत्मा, चाहे वो मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चे हैं, या भाई बहन है, या दोस्त हैं, या पड़ोसी हैं, या सास ससुर हैं, या माता पिता हैं, या भाई बहन हैं, वो सब के सब कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार जिनको मुझे कुछ देना है, जिनको मुझे पिछले जन्मों का दुख दिया हुआ है, वो मुझे इस जन्म में मेरे संबंधी बनके मुझे दुख देंगे। मेरा पति बन करके, मेरी पत्नी बन करके, मेरे बच्चे बन करके, मेरे भाई बहन बन के, मेरे सास ससुर बन के मुझे दुख देंगे, और जिसको सुख दिया है वो मुझे सुख देंगे, इन्हीं संबंधों के द्वारा ही सुख देंगे। और शिव बाबा इसका डायरेक्टर है इस ड्रामा का, और वो एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। कोई व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है और मैं शिव बाबा को कहूं, बाबा इसको समझा दो ना, ये मेरे को बहुत दुख देते हैं, ये मुझे बहुत तंग करते हैं, तो बाबा क्या करेंगे? उसको मना करेंगे इसको दुख मत दो? मना नहीं करेंगे। बाबा कहेंगे इसको पूरा दुख दो, अगर ब्याज रह गया तो ब्याज भी लगा के दो, क्योंकि अगर वो दुख नहीं देगा तो हिसाब किताब बाकी रह जाएगा। हाँ, अगर मैं शिव बाबा को सच्ची दिल से याद करता हूं, सच्ची दिल से बाबा को याद करता हूं, तो बाबा मुझे सहन शक्ति दे देगा, समाने की शक्ति दे देगा, सामना करने की शक्ति देगा, सहयोग करने की शक्ति देगा, परखने की शक्ति दे देगा कि बच्चे ये तुम्हारा ही किया हुआ कर्म है,
तुमने इसको दो जन्म पहले इतना दुख दिया हुआ है, इसलिए वो ये व्यक्ति आपको वापस दुख दे रहा है। हमें निर्णय करने शक्ति देगा, बच्चे तुम इसको इस तरह से सहन करो, विस्तार को सार मिलाने की शक्ति देगा, मतलब पहाड़ जैसी बात को भी राई बनाने की शक्ति दे देगा, राई को भी रुई बनाने की शक्ति दे देगा, कांटे को भी फूल बनाने की शक्ति दे देगा, और वो आपको सूली से हम कांटा बन जाए, वो दुख कांटा बन जाए, कांटे से फूल बन जाएगा और समेटने की शक्ति दे देगा, ताकि वो हिसाब किताब भी चुप्त हो जाए और मुझे दुख भी ना हो। तो बाबा को याद करने से ये फायदा होगा, इसलिए अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा हुआ है, बुरा नहीं हुआ है। किसी ने दुख दिया, धोखा दिया, तंग किया, चीट किया, कुछ भी किया है, निंदा की, गिलानी की, पब्लिक में मेरा नाम खराब किया, बदनाम किया, जो भी किया अच्छा हुआ है। दुनिया सारी यहां फंसी हुई है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, बात मत पूछो, मेरे दिल में इतने बड़े बड़े घाव हैं, ऐसे ऐसे करके लोग बातें करते ना, मेरे दिल में पता नहीं बहुत बड़े बड़े जख्म हैं। वो जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, क्योंकि हमने भी जख्म दिए हुए हैं, और जो हो रहा है अभी हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि अभी बाबा मिल गया इसलिए बहुत अच्छा हो रहा है, अभी बाबा से भी रोज हम बात कर सकते हैं, और जो होने वाला है वो तो बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। कुछ भी हुआ, कुछ भी हुआ, कुछ नया नहीं हो रहा है, कलप पहले वाला ही हो रहा है, कलप कलम, हम हर कलप में हमने वो चीजें इसमें से निकले हुए हैं, यही दुख हमने हर कलप में सहे हुए हैं, तो इसको बहुत गहराई से, ये इसको बोलते हैं ABCD, इसको बोलते हैं ज्ञान की ABCD, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन एंड डी फॉर ड्रामा। तो ये जो ABCD है, आत्मा मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, बी बाबा मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूं, सी फॉर कनेक्शन मेरे सर्व संबंध उनके साथ हैं, इनके साथ नहीं, दुनिया में जो इनके साथ हम रहते हैं उनके साथ हमारे संबंध नहीं है, उनके साथ हमारे बंधन है, उनके साथ हमारा फर्ज है। हमेशा ये कहने में आता है कि इनके साथ मेरा बंधन है, पति पत्नी का बंधन है, बच्चों का बंधन है, दोस्तों का बंधन है, बिजनेस का बंधन है, नौकरी का बंधन है, संबंध नहीं है। संबंध वहां होता है जहां हमें मिलता है, जहां बैटरी चार्ज होती है। शिव बाबा से हमारा संबंध है, अनकंडीशनल है, हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, हमने इतने पाप किए, बाबा को याद नहीं किया, उल्टे काम किए, कभी भी हम दिन रात में बाबा को याद करते, बाबा फिर भी कहते आओ बच्चे, आओ आओ मेरी गोद में आ जाओ, आओ मेरी गोद में आ जाओ, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे, ये है संबंध। और दुनिया में कंडीशनल है, चाहे पति पत्नी के बीच में है, चाहे बच्चे और बाप के बीच में है, चाहे सास ससुर के आपके बीच में है, किसी भी दोस्तों के बीच में कंडीशनल है, तुम ये करो तो मैं ये करूं, तुम ऐसे चलो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, नहीं चलो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, कंडीशनल है, शर्तों के ऊपर आधारित है, आज है कल नहीं है। और आपने किसी के साथ 30 साल अच्छा काम किया, 20 साल अच्छा काम किया, आपने बच्चों को बड़ा किया, आप रोज की सेवा करते हो, रोज उनको खाना बना के देते हो, रोज सब तरह से देखभाल करते हो, एक दिन आप नहीं करते हो तो क्या क्या क्या, क्या होता है, वो क्या बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, मेरे लिए कुछ नहीं किया तुमने, नहीं ऐसा होता है। तो ये जैसे आपने किसी का लोन लिया हो, और लोन आपने 20 साल की किस्तें भरनी है, आपने 19 साल किस्त भर दी, इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, EMI दे रहे हैं, 20वें साल में नहीं तो कोर्ट से आपका बैंक से नोटिस आ जाएगा कि आपने नहीं भरा, भरो, और भरने के बाद भी 20 साल भरने के बाद भी कोई आपको थैंक यू नहीं बोलेगा, थैंक यू बोलेंगे क्या, आप क्या सोचते हैं, हमने बच्चे को, बच्चे के लिए इतनी सेवा की, बच्चे को इतना पढ़ाया, इतना सा पैदा हुआ तो फिर इसको इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया, इसके लिए इतना किया, कभी तो थैंक यू बोले? थैंक यू बोलते हैं क्या? कोई थैंक यू नहीं बोलता है ना? क्योंकि हमने ये ऐसा ही, जैसे बैंक में से हमने लोन लेते हैं ना, तो मैनेजर कभी थैंक यू नहीं बोलता है किस्त जमा कराने के बाद, जमा कराओ अपने घर जाओ, जमा कराओ अपने घर जाओ, वो खड़े रहो वहां पे कि अभी थैंक यू बोलेगा, थैंक यू बोलेगा, थैंक यू नहीं बोलेगा वो, इस संबंध में कोई थैंक यू नहीं बोलता है, कितना मर्जी करते रहो दिन रात, आप 24 घंटे के बजाय 48 घंटे भी जागते रहो उनके लिए तो भी आपको थैंक यू नहीं बोलेंगे। और आदमी इसी आस में, इंसान इसी आस में परेशान रहता है कि मैं इनके लिए इतना करती हूँ, इतना करती हूँ, इतना करता हूँ, इतना करता हूँ, तो भी ये कभी मेरे लिए, कभी इनके एक शब्द में मेरे अपने इनके मुंह से मेरी बड़ाई के लिए निकलता नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए इतना किया हुआ है, इतना किया हुआ है, इतना किया हुआ है कि अभी आपको बहुत करना बाकी है। ठीक है, तो ये ABCD, तो ये जो है। और मेडिटेशन का मतलब क्या है, बेसिकली राजयोग मेडिटेशन का मतलब क्या है? राजयोग मेडिटेशन शब्द आया मेडरी से, आया मेडरी, MEDERI, मेडरी लैटिन वर्ड है, मेडरी माना टू हील, हील करना, ठीक करना। तो मेडिटेशन का मतलब बेसिकली हीलिंग है, हीलिंग मतलब अर्थात अपने आप को स्वस्थ बनाना। तो जब भी मेडिटेशन क्या करता है कि मेडिटेशन से जो पुराने पुराने जो विचार, पुराने जो हमारे अंदर क्या होता है, ज्यादातर विचार हमें कहां से आते हैं, भूतकाल से आते हैं, पास्ट के साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट से आते हैं, जो पुराने टाइम में हमारे मानसिक हमारे मन को और हमारी भावनाओं को चोटें पहुंची है ना, वही हमको याद आती रहती है। अच्छी बातें याद नहीं आती हैं, नेगेटिव जो भी हमारे साथ हुआ है वही हमको बार बार उबर उबर के, जैसे होता है ना कोई खाना पचता नहीं है तो क्या होता है, उबल उबल के मुंह में आता रहता है ना। हम बहुत हैवी खाना खा लेते तो क्या होता है, हल्का खाना कभी उबल के नहीं आएगा, वो पच जाएगा, सुख पच जाते हैं और दुख उबल उबल के आते, उबल उबल के ना, उबल उबल के याद आते हैं। तो 100 में से 80 विचार तो हमें पास से आते हैं, पास्ट के दुखों से आते हैं, जो अपने पास में दुख सहे, परेशानियां सही, निंदाएं सही, है ना, गालियां सुनी, लोगों ने हमारी बुराई की, धोखे दिए, वो बार बार उभर उभर के आते हैं। और 15% विचार फ्यूचर से भविष्य से आते हैं कि मेरा क्या होगा, इस समय भी मेरा कोई नहीं है, कोई मुझे इतने साल हो गए, कोई मुझे ठीक, मैं इतना सबके लिए करता हूं तो भी मुझे कोई पूछता नहीं है, अब मेरा क्या होगा, अभी बूढ़े, अभी शरीर भी खराब हो गया है, पुराना हो गया है, इसमें भी रोग आने लग गए है ना, अभी क्या होगा, कल कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, कौन संभालेगा, है ना, कौन देखेगा। सिर्फ 5% विचार ही यहीं से आते हैं, प्रेजेंट वर्तमान काल से आते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। 95% विचार हमारे कंट्रोल में नहीं होते, या तो पास से आ रहे हैं या भविष्य से आ रहे हैं। ये मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन क्या करता है, पास्ट के विचारों को और फ्यूचर के विचारों को बंद कर देता, हमको प्रेजेंट में ले आता, वर्तमान में ले आता, इसी को राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। और राजयोग मेडिटेशन में हम क्या करते हैं कि राजयोग मेडिटेशन जो है बेसिकली ये रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन माना अनुभव करना, रियल को अनुभव करना, जो मैं हूं, जो मेरी वास्तविकता है उसको अनुभव करना, ये राजयोग मेडिटेशन कुछ और नहीं, राजयोग मेडिटेशन का ABCD को रियलाइज करना है। मैं अति सूक्ष्म ज्योति, मैं शरीर, मैं स्थूल देह नहीं हूं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा यहां बैठी हूं, इसके अंदर बैठी हूं, पृथ्वी के अंदर बैठी हूं, और यहां से मैं, मुझे आत्मा से 7 ऊर्जाएं निकल रही हैं और शरीर के हर सेल में जा रही हैं। इस बात को अनुभव करना ही मेडिटेशन है, यही योग है, पहला स्टेप। दूसरा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म परम ज्योति बिंदु, परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूं, इसको बहुत गहराई से अनुभव करो, ये राजयोग मेडिटेशन। चलते फिरते उठते बैठते इस बात को अनुभव करो कि ये मेरा, ये मेरी माँ नहीं, ये वो मेरी माँ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू मुझे माँ की पालना और प्यार दे रहा। चलते फिरते उसको महसूस करें, हम शिव बाबा ने मुझे एक दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दे दी है गिफ्ट में, जैसे ही मैं पैदा हुआ या पैदा हुई आत्मा, ये ब्राह्मण जन्म मुझे मिला, पैदा होते गिफ्ट दे दी। क्या गिफ्ट दिए? दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट। इस लिफ्ट में बैठो, बटन दबाओ, कौन सा बटन, के बाबा मुझे आपसे मिलना है, ये बटन दबाओ, शुद्ध संकल्प रूपी बटन स्विच को दबाओ, और आप कहां पहुंच जाओगे? सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे? बाबा की गोद में पहुंच जाओ। बटन दबाते ही कितनी देर में पहुंचेंगे? एक सेकंड से भी कम समय में पहुंच जाएंगे। और बाबा क्या करे, बाबा क्या कर रहा है? बैठा हुआ, खाली बैठा है। आओ बच्चे, आओ आओ बच्चे, आओ आओ बच्चे, मेरी गोद में आ जाओ। खाली बैठा है, उसे काम कुछ भी नहीं है, है ना? काम है क्या बाबा को? बाबा की गोदी में भीड़ लगी हुई क्या? आप माताएं बताओ, जब बाबा के पास जाते बाबा अकेला होता है कि बहुत भीड़ लगी होती है वहां पे? अकेला होता है, भीड़ होती है, अकेला, बस अकेला बैठा, आओ बच्ची, आओ आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ। बाबा मैं तो बहुत थक गई, बाबा मैं तो ये होता हो गया, अच्छा आओ ना बच्ची, आओ ना, मैं सिर दबा देता हूँ, आओ बच्ची, आज है ना, आओ आओ, आओ कैसी हो? तो बाबा तो इतना प्यार करता है ना, और सिर्फ इतना ही संकल्प करने की आवश्यकता है, उसमें बैठे मन बुद्धि से, उसमें बैठे और पहुंच जाओ बाबा के। तो ये हमको, ये अनुभव करते रहो चलते फिरते, ये माँ का अनुभव है। बाप का अनुभव क्या है? सी फॉर कनेक्शन ना, बाप के रूप में ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है बाबा। तीसरा नेत्र माना ज्ञान का तीसरा नेत्र, मतलब समझ, ज्ञान माना समझ, ये समझ कि मैं ये नहीं हूं, मेल फीमेल नहीं, मैं तो अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु आत्मा। ये जो ना, ये जो मेरी सास है, ये मेरा पति है, ये भी अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु आत्मा। ये मेरा पति नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी सास या ससुर नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं, ये भी अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु है। मैं इसकी मां नहीं, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा। ये देखने की हमें तीसरे, इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखो, ये समझ से देखो। पति के रूप में नहीं देखो, पत्नी के रूप में नहीं देखो, बच्चे के रूप में, भाई के रूप में नहीं देखो, आत्मा के रूप में देखो। ये बाप ने, बाप हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। इस गहराई से देखने की आवश्यकता, इससे मोह विकार खत्म होगा, इससे लोभ खत्म होगा। इस गहराई से जब हम देखते हैं तो हमें शक्ति मिलेगी, और तब हमारा कनेक्शन बाबा से लगेगा। तब हम बाप की गोद में बैठे बैठे अनुभव कर रहे हैं, ऊपर चले गए ना बाबा से, फिर माँ क्या करती है? बाप को, बाप के, बाप से हमें ज्ञान का नेत्र मिलता है, और बाबा की गोद में बैठे बैठे देखो शिव बाबा कैसा है, ब्रह्मा बाबा कैसा है। सूक्ष्म वतन माना क्या है? सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है, सूक्ष्म वतन ऐसा नहीं कि बस ये दुनिया के पार सूक्ष्म वतन, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म वतन माना ये पांच तत्वों रूपी शरीर से ऊपर, ये सूक्ष्म शरीर, पांच तत्वों का माना शरीर ना, इससे हम बाहर निकल जाते हैं। सूक्ष्म वतन बेसिकली क्या, शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो बाबा ने शिव बाबा के बुद्धि को और मन को संपूर्ण पवित्र बना दिया आते ही, वो ही सूक्ष्म वतन है। और ब्रह्मा बाबा ने तपस्या करके, 33 साल तपस्या करके अपने संस्कारों को भी 100% पवित्र बना दिया। तो सूक्ष्म वतन क्या है? ब्रह्मा बाबा का 100% शुद्ध बुद्धि, 100% शुद्ध मन, 100% शुद्ध संस्कार। जब मेरे को दिव्य, जो बाबा ने मुझे दिव्य बुद्धि दी, दिव्य बुद्धि माना जिस बुद्धि में ABCD भरा हुआ है, ज्ञान भरा हुआ है, ये बाबा की मुरली भरी हुई है, वो बुद्धि, जब उस बुद्धि को हम यूज करते हैं बार 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 बार, वो संस्कार बन जाती है, और बार बार ये पवित्र संकल्प उठाते हैं मन में, एक एक संबंध को अनुभव करने के संकल्प उठाते हैं, माँ का, बाप का, शिक्षक का, सतगुरु का, बंधु का, सखा का, साजन का, सर्जन का, बच्चे का, इसको एक एक को अनुभव करने का संकल्प उठाते हैं, पवित्र संकल्प उठाते हैं, तो हमारा मन भी पवित्र होता जा रहा है। तो हम ऐसा फील करते हैं जैसे हम बाबा की गोद में पहुंच गए, हमारा सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो गया और ये सूक्ष्म शरीर मतलब मन और बुद्धि बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं। तब हमारी बाबा से बात होने लगती है। जरूरी नहीं कि हमें बाबा नजर आए, किंतु बाबा से हमारी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो जो संकल्प हम करते हैं बाबा को टच होता है, और बाबा का जो टच बाबा से जो बाबा का जो संकल्प होता है वो हमको टच होता है। तो ऐसा लगता है जैसे बाबा से हमारी बातचीत हो रही है। ये है ब्रह्मा बाबा की गोद। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा की गोद को ऐसी कि हमने गए और बाबा की गोद में चिपक गए। इसमें ऐसी फीलिंग आती है जैसे बाबा मेरे को बहुत अपनी गोदी में लेके बैठा हुआ है। ये सूक्ष्म फीलिंग हमको आती है, कोई फिजिकल फीलिंग नहीं है कि बाबा हमको गोद में लेके ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसा नहीं है। फिर जितना जितना हमारा मन और बुद्धि शुद्ध होता जाएगा, हमारे संस्कार परिवर्तन होते जाएंगे, जितना जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलते जाएंगे, संस्कार परिवर्तन होने से जब हम गुस्सा नहीं, बाबा की आज्ञा है बच्चे गुस्सा मत करो, बच्चे किसी को गलत दृष्टि से मत देखो, बच्चे किसी बात का लोभ मत रखो, किसी के प्रति मोह ममत्व मत रखो, कभी अहंकार मत दिखाओ, देह अभिमान में मत आओ, चिंता मत करो, भय मत रखो, किसी के ऊपर शक मत करो, किसी को अनुमान मत लगाओ, ईर्ष्या मत करो, जल्दीबाजी मत करो, आलस्य मत करो, अलबेलापन मत करो। तो बाबा की श्रीमत, जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, सपूत बच्चे बनते हैं, तो धीरे धीरे हमारे संस्कार शुद्ध होते जाते, फिर हमें बाबा से ऐसे होता है जैसे बाबा का सूक्ष्म शरीर भी महसूस होता है, अपना सूक्ष्म शरीर भी महसूस होता है, फिर बाबा की हमें ऐसे फील होता है कि सचमुच हम बाबा की गोद में। शुरू शुरू में फील नहीं होता है, शुरू शुरू में सिर्फ संकल्प टच होते हैं, समझ रहे हैं बात। कई माताएं और कई भाई बहन इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सूक्ष्म वतन में गए हमें तो कुछ नहीं होता, हमें तो बात नहीं होती, हमें तो बाबा नजर नहीं आता है ना। विजुलाइज करते हैं अपने मन से बाबा को वहां बनाते हैं, वैसा बाबा होता नहीं है। ठीक है, बेसिकली मेडिटेशन हमारा रियलाइजेशन है, विजुलाइजेशन नहीं है। तो इसको बहुत गहराई से अनुभव जितना करते जाएंगे, जितना मन शुद्ध होता जाएगा, जितनी हमारी बुद्धि में ये शुद्धता आती जाएगी, हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। और धीरे धीरे जैसे बताया मैंने 84वें जन्म के विक्रम विनाश होंगे, 83वें 82वें जन्म के, और जैसे जैसे फिर हमारा मन और बुद्धि शुद्ध होता जाएगा, आत्मा की बैटरी चार्ज होती जाएगी, कर्मेंद्रजीत बनते जाएंगे, हमारी आंखें, हमारी नाक, हमारे मुख कान, हमारे मुख हमारे वश में आता जाएगा। फिर ये नहीं करेगा मैं ये खाऊं, इससे ये बोलूं, ऐसा परवश नहीं होगी, ये देखूं, ये सुनूं, ये इससे विजय इस पे विजय होती जाएगी। जब ये विजय होती जाएगी, आत्मा में पवित्रता की शक्ति भरती जाएगी, विचार कम होते जाएंगे, जब विचारों की संख्या कम होती जाएगी ऐसे श्रीमत पे चलते चलते, तो फिर हमारे अंदर हमारी स्थिति में माया जीत बनते जाएंगे। तब हमको काम विकार, ये जो हमारे जो विक्रम है ना, विक्रम विनाश का क्या मतलब है, जब हमारे तीन संकल्प, ये दुनिया चार संकल्पों तक की है, ये साकार दुनिया एबीसीडी ना, एबीसीडी में ये ड्रामा इस दुनिया में है, सूक्ष्म वतन में ड्रामा नहीं है। जब आप अपने अंदर मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा, जब आप हर बात को ये बिंदु लगा देते हो, जो हुआ अच्छा हुआ, जब इतनी शक्ति आपके अंदर आने लगती है, तो आप सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हो। तीन संकल्प सिर्फ ए बी सी, आत्मा बाबा कनेक्शन, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ, एक एक संबंध की अनुभूति जब होती है, ये सूक्ष्म वतन की स्थिति। और जब खाली दो संबंध रह जाते, दो बातें रह जाती है, मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो आप बाबा की गोद में पहुंच जाते हो, ये आनंद की स्थिति है। और जब सिर्फ एक संकल्प रह जाता है, सिर्फ बाबा, आप बाप के लव में लीन हो जाते हो, एक संकल्प खड़े रहे, तो ये परमधाम की स्थिति। इस स्थिति में जब खाली बाबा याद रह जाता है, सब कुछ भूल जाता है, अपना देवान भी खत्म हो जाता है, अपना ये भी नहीं याद रहता कि मैं कौन हूं, सिर्फ बाबा, बाबा के प्यार में खोए, बस सब फुल स्टॉप, कोई भी संकल्प नहीं चल रहा। उस समय जो हाई फ्रीक्वेंसी मेमोरीज होती है हमारे अंदर, काम विकार की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, उसने ये दुख दिया, इसने धोखा दिया, इसने ये किया, वो मेमोरीज डिलीट होने लगती है, वो स्मृतियां डिलीट माना मिटने लगती हैं, मर्ज होने लगती हैं। इसको बोलते हैं विक्रम विनाश। ये परमधाम की स्थिति में होता है, बीज रूप स्थिति में होता है, इसी को ज्वालामुखी याद भी कहते हैं। और जब ये डिलीट होगा, इसकी निशानी क्या है, जो व्यक्ति आज मुझे, कल मुझे मिला था, जिसको देख के मुझे गुस्सा आया था, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे को धोखा दिया, इसने मेरे को तंग किया, आज वो व्यक्ति वापस मुझे मिलेगा, उसको देख के गुस्सा नहीं आएगा, याद ही नहीं आएगा कुछ ऐसा हुआ था, हम उनसे प्यार से मिलेंगे, पॉजिटिव रूप में मिलेंगे, आज वो गलती दोबारा नहीं होगी, उसको देखे कुछ भी संकल्प, उससे अच्छे, उसके अच्छे गुण नजर आएंगे, बुरे गुण नजर नहीं आएंगे। ये निशानी के आज सुबह अमृत में मैंने योग किया, मेरा विक्रम विनाश हुआ। फिर जिससे आज गलती हुई थी, कल सुबह योग किया दिन में, उससे कुछ गलत नहीं होगा, वो मिलेगा व्यक्ति, ये बच्चे हमारे सामने आएंगे, पति हमारे सामने आएगा, सास ससुर हमारे सामने आएंगे, आज उनको देख के अच्छी अच्छी बातें उनकी दिखाई देंगी, बुरी बातें दिखाई नहीं देंगी। इसका मतलब आज अमृत वेले मैंने, मेरा विक्रम विनाश हुआ। अगर आज भी आ रहा है तो इसका मतलब मेरा विक्रम विनाश नहीं हुआ, राइट? तो इसलिए ये विक्रम विनाश सिर्फ अमृत वेले ही हो सकते हैं, क्योंकि जब उठते हैं तो हमारे संकल्प दो तीन संकल्प ही होते हैं, तीन चार संकल्प, मैक्सिमम चार संकल्प, नींद से उठते हैं ना तो तीन चार संकल्प ही होते हैं। जैसे ही बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, बाबा की याद में मुंह हाथ धो के ब्रश करके बैठ जाते हैं, एकदम बाबा के पास सूक्ष्म वतन पहुंच जाते हैं। दो संकल्प माना सूक्ष्म वतन, एक संकल्प जब एक हुआ तो परम धाम, विक्रम विनाश होना शुरू हो जाता है। ये चीज सुबह हो सकती है बड़े आराम से, तो इसलिए इस पर हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। किंतु अमृत वेला पावरफुल उसका होगा जो सारा दिन बाबा की श्रीमत पे चलेगा, हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास। और सबसे अच्छा तरीका सारा दिन बाबा की श्रीमत पे चलने का मुरली है। मुरली हमेशा जेब में रहनी चाहिए, नहीं तो अगर मुरली नहीं मिलती तो कागज से नोट कर लेनी चाहिए, मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर, कोई अच्छी सी बातें, कुछ मुरली के दो चार पॉइंट, धारणा के लिए मुख्य सार, वरदान और स्लोगन। जैसे ही हम घर से बाहर मुरली से बाहर निकल निकाल लिया, ये बाबा का लव लेटर जैसे है, इसको जेब में दिल के पास रखते हैं ना हम लोग, लव लेटर कहाँ रखते हैं, दिल के पास है ना, और लव लेटर कब पढ़ते हैं, जैसे देखते हैं आसपास कोई नहीं है, यूं निकालते हैं, चुपचाप निकालते हैं जेब से, यूं देखते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर जेब में रख देते हैं, है ना। फिर जैसे ही मौका मिलता है फिर क्या करते हैं, फिर निकालते हैं, फिर देखते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, फिर रख देते हैं। तो दिन में कम से कम 100 बार ऐसे करना चाहिए। कितनी बार करना चाहिए, एक एक लाइन, वरदान है, आज का स्लोगन है, आज बाबा ने ये कहा बच्चे ऐसे करना है, आज बाबा ने कहा ये बच्चे ऐसे करना है, आज बाबा ने ये कहा, आज का गीत ये था मुरली में, आज बाबा ने ये गीत बजा था सुबह, आज हमने ये था। तो उसको देख देख के हमें बार बार स्मृति में लेके आओ, मनन करो उस पर, मन रिवाइज करो, चिंतन करो कि बाबा ने ये कहा मुझे, तो मैं तो ऐसा नहीं बना, मैं तो ऐसी नहीं बनी हूं, मुझे तो ऐसा बनना है। फिर मंथन करो, मंथन माना मुझे कैसे बनना है, मुझे बनना ही है, कैसे बनना है, घोटो उसको। फिर उसमें जो मक्खन निकलेगा उसको सिमरण माना, उसको फिर कार्य में लगाओ। बाबा ने कहा सबसे मीठा बोलो, अब जब भी जो भी व्यक्ति मुझे मिलेगा उसको मैं मीठा बोलूंगी, मीठा बोलूंगा, सामने वाला गाली देगा तो भी मिठाई बोलेंगे, कोई नफरत के बोल बोलेगा तो भी मिठाई बोलेंगे। तो ऐसे उसको सिमरण माना कार्य में लगाना, जो बाबा ने जो मक्खन निकला उस पॉइंट को निकाल करके निचोड़ निकला उस बात का, उसको फिर कार्य में लगाने को सिमरण कहते हैं। इसे बोलते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, जितनी बार इसको कार्य में लगाएंगे उससे सुख मिलेगा, सुख मिलेगा माना हमारे से संबंध अच्छे हो जाएंगे और संस्कार बन जाएगा, फिर हमारी स्मृति में रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर मेरे नया एक अच्छा श्रेष्ठ कर्म रिकॉर्ड हो गया, है ना, सुक्रम हो गया, वो उससे विक्रम दब जाएगा, राइट? तो ये सबसे अच्छा साधन है सारा दिन बाबा की श्रीमत पे चलने का। जो ऐसा करेगा दिन में कम से कम 21 बार तो करना चाहिए ऐसे। कितनी बार करना चाहिए? 21 जन्म का भाग्य पाना ना, तो 21 जन्म तो कम से कम करना चाहिए। तो 21 बार अगर हम ऐसे करते हैं, मुरली को हमेशा नोट करके जेब में रखो, डायरी में नहीं मत रखो, आज की मुरली आज मुझे अंदर जानी चाहिए, आज मेरे रिकॉर्ड में आनी चाहिए। कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तो भी कोई बात नहीं। हमसे पीछे गलतियां हुई, ठीक है गलतियां हुई, किंतु अब आगे तो गलती ना हो ना। पहले भी गलती की, अब भी गलती करते रहे क्या? एक बार एक्सीडेंट हो गया तो बार बार रोज एक्सीडेंट करेंगे? उसके बाद रोज करना है एक्सीडेंट? एक्सीडेंट करने की कसम खाइए क्या? नहीं, एक बार हुआ, दोनों को ध्यान रखना चाहिए एक्सीडेंट होने के बाद, कि एक बार एक्सीडेंट बार बार एक्सीडेंट ना हो। प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा करें, दोबारा हम नहीं करेंगे, हम बाबा की श्रीमत पे चलेंगे। उसका साधन मुरली है। दो चीज सत्य है, एक तो बाबा सत्य है, एक बाबा की मुरली सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। मनुष्यों ने जो बनाया सब झूठ है, क्योंकि मनुष्यों में हमेशा देहभान रहता है, देहाभिमान रहता है, कुछ ना कुछ लगाव, कुछ ना कुछ झुकाव, कुछ ना कुछ टकराव, कोई ना कोई किसी के प्रभाव में रहते हैं, इसलिए मनुष्यों का विश्वास नहीं कर सकते। भगवान ने जो बताया उसकी उस पर चलना, सिर्फ श्रीमत पे चलना, ना मनमत, ना परमत, ना मनुष्य मत, किसी पे चलने की आवश्यकता नहीं। तो मैं तो समझता हूं अगर हम ये करते हैं तो हमारी अमृत वेला फिर पावरफुल होता है। अमृत वेला इनाम है सारे दिन की श्रीमत पे चलने का। सारा दिन नियम मर्यादाओं में चलता है जो व्यक्ति, उसको अमृत वेला बहुत अच्छा होता है। तो ये अमृत वेला करने से धीरे धीरे हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, और एक दिन 63 जन्म, हमारे 63 जन्म का विक्रम विनाश होने के बाद फिर हमारी कर्मेंद्र जीत बन जाएंगे, माया जीत, पांचों विकार पर हमारी विजय हो जाएगी, प्रकृति जीत, जो भी खाने को मिलेगा उसमें हम संतुष्ट रहेंगे, आसक्ति में नहीं खाएंगे, और फिर हम मन जीते जगत जीत हो जाएंगे। तब वो स्थिति आएगी विक्रमाजीत हो जाएंगे, तब हमसे कोई विक्रम नहीं होगा। फिर जब त्रेता के जन्म आएंगे, 20 जन्म, 12 जन्म और 8 जन्म, तो वो त्रेता के जन्म में हमें कोई विक्रम किया नहीं हुआ, तब वो स्थिति कर्मातीत कहलाएगी। उस समय जब हमसे कोई भी विक्रम होगा ही नहीं, तो उस समय बैटरी बड़ी जल्दी जल्दी चार्ज होगी। अभी क्या होता है, बैटरी चार्ज होती है फिर डिस्चार्ज हो जाती है, कर्म करते हैं फिर डिस्चार्ज। लाख गुना कमाया, लाख गुना गमाया, एक अच्छा कर्म किया, लाख गुना कमाया, एक बुरा कर्म किया, लाख गुना गवाया। रात का हिसाब देखो तो क्या होता है, बराबर जितना कमाया उतना गवाया। क्या कहां पहुंच गए? 10,000 कमाए, 10,000 गवाए, कितने कितने पैसे बचे? जीरो, है ना। और कई बार तो 10,000 कमाए, 20,000 खर्च कर दिए, तो कितने पैसे बचे? माइनस हो गया ना, तो दुख होता है ना। तो इसलिए हमको ये अटेंशन रखना है। इसमें चार नियम, चार मर्यादाएं पक्की करनी होती हैं। पहला तो है अमृत वेला पावरफुल हमेशा करो, बाबा के सच्चे बच्चे हमेशा अमृत वेला पावरफुल करते हैं। दूसरा, बाबा की मुरली कभी मिस मत करो, क्लास में जाके सुनो। तीसरा, सारा दिन मन में 21 बार मैंने बताया मुरली हम रिवाइज करें, और सोने के पहले लेटर लिखें बाबा को, सारी बात गलतियां जो है लिखें, फिर चार्ट भरें याद का, फिर मुरली पढ़ें बाबा की, फिर याद करके सो जाएं और 9:30 सो जाएं। ये चार नियम, चार मर्यादाएं, पवित्रता जितनी गहराई से अपनाएं। दूसरा, शुद्ध सात्विक भोजन खाएं। तीसरा, सत्संग, बाबा और बाबा की मुरली दो चीज का संग करें। चौथा, दैवी गुणों की धारणा करें। तो इस तरह से हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, और एक दिन हम कहां पहुंच जाएंगे? विक्रमाजीत स्थिति को पहुंच जाएंगे, फिर कर्मातीत बन जाएंगे। ओम शांति।
तेरी याद का दीप जले मन में, एक ज्योत जगे इस जीवन में। तेरी याद का दीप जले मन में, एक ज्योत जगे इस जीवन में। रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं